चलें क्लास शुरू कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिल्लज़ी अस्तफा अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी याति बसीरा वातूनी बिअहलिकुम अजमईन इलल आखिर सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وزدنا علما تو اس کلاس میں سورہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر پڑھتے ہیں معارف القرآن جلد نمبر 5 سے اور اس میں ہم آیات نمبر 93 سے لے کر کے 100 تک کی خدا سے تفسیر پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں، اور صفحہ نمبر تھا 141۔ تو صفحہ نمبر 141 تھا۔ اچھا بھائی، زوم کا ایک ایرر ہے، جب آپ پیج نمبر یہ اسکرین شیئر چینج کرتے ہیں نا تو میری ونڈوز بند ہو جاتی ہے، کیا کریں اس کا، کوئی حل بتائیں۔ بہرحال کچھ نہیں کر سکتے بلا۔ تو اس میں جو ہے وہ بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب والد صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے جو ہے وہ کرتا ان کے اوپر ڈال دیا اور اس سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ والد صاحب نے بیٹوں سے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اس لیے میں نے تم کو یوسف علیہ السلام کے تجسس کے لیے بھیجا تھا۔ تجسس سے مطلب یہ کہ ان کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا، دیکھو آخر اللہ تعالیٰ میری امید راست لایا۔ ان کا یہ قول اس سے اوپر کے رکوع میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت سب بیٹوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، ہمارے لیے خدا سے ہمارے گناہوں کی دعائیں مغفرت کیجئے، ہم نے جو کچھ آپ کو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تکلیف دی ہم بے شک خطا وار تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بھی معاف کر دیجئے، کیونکہ عادتاً کسی کے لیے استغفار وہی کرتا ہے جو خود بھی مؤاخذہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو والد صاحب سے نا انہوں نے پہلے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور آپ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کی درخواست کر دیجئے، بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگنے کے لیے درخواست کری اپنے والد صاحب سے۔ تو اس کو پھر ایکسپلین کر رہے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ ان کی تفسیر بیان القرآن سے لیا جاتا ہے، یہ خلاصہ تفسیر، کہ اس کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ معافی کی دعا اللہ تعالیٰ سے وہی مانگتا ہے کہ جس نے خود بھی جو ہے نا وہ معاف کر دیا ہو اور مواخذہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب آگے پڑھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم، کہ ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے میں دعائے مغفرت کروں گا، بے شک وہ غفور ہے رحیم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے جب کوئی معافی مانگے اپنے قصور کے اوپر، نادم اور شرمندہ ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً معاف کر دیتے ہیں۔ تو تم بھی نادم ہو چکے ہو اور تم نے مجھ سے بھی دعا مانگنے کے لیے کہا ہے تو میں مانگوں گا اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو غفور الرحیم کا لفظ ذکر کر دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی غفوری اور رحیمی والی صفت کو استعمال کرتے ہوئے معاف کر دیں گے، اور اسی سے ان کا معاف کر دینا بھی معلوم ہو گیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کا معاف کر دینا بھی معلوم ہو گیا۔ اور ان قریب انہوں نے کیوں کہا، سین کا جو لفظ ہے، بلکہ صوفہ یہاں پر ہے، صوفہ صوفہ کا مطلب ہوتا ہے ان نیئر فیوچر، ان قریب، تو انہوں نے ان قریب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا فرماتے ہیں کہ ان قریب کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کا وقت آنے دو جو کہ قبولیت کی ساعت ہے، قضا فی الدر المنثور مرفوعا، یعنی حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو کہ در منثور کتاب کے اندر منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت دعا مانگنے کا ان لوگوں کو کہا کہ میں کروں گا تہجد کے وقت، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس سے جو ہے نا وہ शायद अल्लाह ताला हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि भाई तहज्जुद का जो वक्त है ना, तो इसकी कोशिश करो पाने की, इसका एहतमाम करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो है ना, ये खुसूसियत के साथ दुआ की कबूलियत का वक्त है। वरना दुआ जो है वो किसी वक्त भी मांगी जा सकती है, कोई उसके लिए वक्त की शर्त नहीं है। गर्ज सब मिस्र को तैयार होकर चल दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम खबर सुनकर इस्तकबाल के लिए मिस्र से बाहर तशरीफ लाए और बाहर ही मुलाकात का सामान किया गया। जैसे कि पिछली क्लास के अंदर हम बात कर चुके हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने उमूर सल्तनत को छोड़ करके तो वालिद साहब को लाने के लिए नहीं गए, ठीक है, क्योंकि उमूर सल्तनत की जो अहमियत थी वो इससे भी ज्यादा बढ़ के थी कि वालिद साहब को लेकर के आया जाए जा करके, ठीक है। उस जमाने में कोई कॉन्कॉर्ड तैयारा तो होता नहीं था कि बस पलक झपकते में जो है ना वो पहुंच गए वहां पे और फिर फौरन से जो है वो लेकर के चंद घंटों के अंदर वापस आ गए। तो उसमें तो फिर कई दिन का मामला लगना था ना, यानी मिस्र का सफर करना फिर वहां से वापस आना, तो वो उन्होंने नहीं किया और अल्लाह ताला ने इससे जो है ना वो हमें बड़ा फायदा हुआ इस वाक्य को पढ़ करके कि हमने जो जो बच्चों की सीरत खुलफाए राशिदीन वाली क्लास थी तो वहां पर भी अल्लाह ताला ने उमूर सल्तनत की अहमियत वाली बात जो है ना वो याद दिला दी और एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हल हो गया, ठीक है, कि सहाबा कराम ने नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद उमूर सल्तनत को सबसे पहली तरजीह क्यों दी। उमूर सल्तनत का इंतजाम करने को कि भाई कोई अमीर जो है ना वो तय हो जाए, इसको सहाबा कराम ने सबसे पहली अहमियत क्यों दी। इसलिए नहीं दी कि नाउज बिल्ला वो हुकूमत के भूखे थे, उनको जो है वो सरदारी चाहिए थी, उनको जो है वो मराआत चाहिए थी, जैसे कि हमारे मुल्कों के अंदर है जो हुकूमत के पीछे भागते हैं तो वो क्यों, क्योंकि मराआत चाहिए होती है, उनको लग्जरीज चाहिए होती हैं, उनको जो है वो कोटे चाहिए होते हैं और ठेके चाहिए होते हैं और बड़ी जो है वो शोहरत चाहिए होती है, तो इस वजह से जो है वो हुकूमत के पीछे भागते हैं। अब चूंकि हम इसी माहौल से वाकिफ हैं, इसी माहौल के अंदर पल बढ़ करके जवान हुए हैं, तो अब जो है ना वो हम सहाबा कराम के बारे में भी यही गुमान करना शुरू हो गए कि सहाबा कराम भी जो है ना वो इसी वजह से खिलाफत की बातें करना शुरू हो गए थे। हाल के नबी अलैहिस्सलाम अभी दुनिया से पर्दा फरमाए, अभी दुनिया से पर्दा फरमाया था, उसी दिन ही जो है वो खिलाफत की बहस शुरू हो गई कि भाई कौन खलीफा बनेगा, कौन खलीफा बनेगा, ठीक है। तो ऐसा हरगिज हरगिज नहीं था, बल्कि वजह यह थी कि उमूर सल्तनत जो है ना ये इंतहाई अहम तरीन चीजों में से है, क्योंकि अगर ये खराब हो जाए तो फिर दुनिया के अंदर फसाद होता है, दुनिया के अंदर फसाद होता है और फिर जो है ना वो जाने तल्फ होती हैं, औरतें बेवा होती हैं, बच्चे यतीम होते हैं, सारी की सारी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाती है, जो खैर की मेहनतें की गई थी, जो डेवलपमेंट वर्क किया गया था, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट वर्क हो चाहे वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वर्क हो, जब फसाद शुरू हो जाता है, जंगो जदल, और खास तौर पे अगर खाना जंगी जैसी कैफियत शुरू हो जाए तो फिर सारी डेवलपमेंट जो है ना वो ठप हो जाती है, एकदम से जो है वो आसमान से जमीन पे मामला पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो के कौन थे ये लोग, ये उलुल अलबाब थे, ये सहाबे कराम कौन थे, उलुल अलबाब, ये लुब वाले थे, यानी सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अकल जो थी ना वो इन लोगों के पास मौजूद थी। तो ये अगर इस बात को नहीं समझते तो फिर और कौन इस बात को समझता। तो इस वजह से जो है ना वो सबसे पहले जो है वो उमूर सल्तनत का फैसला करना, ठीक है, और इसके बाद फिर जो है नबी अलैहिस्सलाम की बेरियल का मामला जो है वो इसके बाद अंजाम दिया गया था। बहरहाल जिसको बात नहीं समझ में आई हो तो वो सीरत क्लास की रिकॉर्डिंग भी सुन सकता है, हमने सारे ग्रुप्स के ऊपर उसको भेज दिया था। बहरहाल तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वो तो नहीं कर सके उमूर सल्तनत को छोड़ करके याकूब अलैहिस्सलाम के पास, लेकिन कम अज कम विद इन द सिटी तो इसमें तो फ्यू आवर्स ही लगते हैं, और अगर खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो भी गई तो आप फौरन वापस आ सकते हैं अपने ऑफिस के अंदर, अपने दरबार के अंदर फौरन वापस आ सकते हैं, ज्यादा दूर तो नहीं होता शहर का जो है वो बाहर का इलाका, बॉर्डर का जो एरिया होता है। तो ये जो है ना फिर बॉर्डर तक गए और यानी बाहर से मुलाकात का सामान किया गया। फिर जब सब के सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने सबसे मिल मिलाकर अपने वालदैन को अपने पास ताज़ीमन जगह दी, और बातचीत से फारिग होकर कहा कि सब मिस्र में चलिए, यानी सब शहर में चलिए, और इंशा अल्लाह ताला वहां अमन चैन से रहिए। ठीक है, उदखुलू मिस्रा इंशा अल्लाहु आमिनी, अमन चैन के साथ आप वहां पर रहिए। ठीक है, क्योंकि अमन चैन कैसे होता है, जब अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक उमूर सल्तनत चलाए जा रहे होते हैं तो फिर अमन चैन होता है, और जब नहीं चलाए जा रहे होते तो फिर अमन चैन जो है वो नहीं हो सकता, किसी ना किसी शक्ल में बेचैनी जरूर होती है। ठीक है, चाहे ऊपर से भी बेचैनी हो, अंदर से भी बेचैनी हो, ठीक है, चाहे जो है वो ऊपर से चैन हो लेकिन अंदर से बेचैनी हो, लेकिन बेचैनी लाजिमन होती है जब खुदा के अहकाम की नाफरमानी की जा रही होती है। तो इन्होंने कहा कि जी आप अमन चैन के साथ आकर के रहिए मिस्र के अंदर। अच्छा, मुफारकत का गम और कहत का अलम सब काफूर हो गए, यानी जो गम था और अलम यानी दुख था ना इनको, इतनी दूरी का अपने वालदैन से, अपने घर बार से, अपने भाइयों से, हर चीज का दूरी थी, तो वो सब का सब काफूर है। काफूर यानी बिल्कुल जो है ना वो खत्म हो गया। गर्ज सब मिस्र में पहुंचे। देखें, जितना गम होता है ना, जितना दुख होता है ना, जब इंसान को खुशी मिलती है ना, तो खुशी एक ऐसी चीज होती है कि जिससे कितना ही बड़ा गम क्यों ना हो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, कितना ही बड़ा गम क्यों ना हो, वो उसको खत्म होने में टाइम नहीं लगता, इमीडिएटली गम गम जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इंसान खुश होता ही उस जब गम खत्म हो। अब किसी को अगर ये बात समझ में ना आ रही हो और ये कहें कि नहीं जी ऐसा क्या, ऐसे कोई थोड़ी होता है, गम को जाते जाते भी टाइम लगता है, गम को जाते जाते भी टाइम लगता है, तो नहीं भाई, खुशी मिल गई, गम खत्म हो गया। अब इसको अगर आप सीधे तरीके से नहीं समझते तो उल्टे तरीके से समझ लें, उल्टा तरीका तो खैर नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके से समझ लें कि भाई खुशी तो मिलती ही तब है ना जब गम खत्म हो गया। अगर आपका गम खत्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये आपको खुशी अभी मिली नहीं, अभी आपको खुशी मिली नहीं है, यानी ये एक दूसरे की जिद है। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई कहे कि भाई जब सूरज निकल गया तो एकदम से रात खत्म हो गई। ठीक है, एकदम से रात खत्म हो गई, तो कोई कहे नहीं एकदम से तो खत्म नहीं होती, रात को खत्म होते होते बहुत टाइम लगता है। तो भाई रात को खत्म होते होते टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन वो क्यों लगता है, वो इसलिए कि सूरज अभी निकला नहीं होता है। ठीक है, अभी सूरज जो है वो तो छुपा हुआ है ना, अभी वो तुलू कोई थोड़ी हुआ है, तो इस वजह से रात को जो तारीकी टाइप की एक चीज होती है वो अभी टाइम लगता है उसको खत्म होने में। लेकिन अगर कोई ऐसा करे कि सूरज को उठा करके एकदम से ऊपर ले आए, तो उसके बाद फिर कोई टाइम लगेगा रात को खत्म होने में, वो तो इमीडिएटली रात खत्म हो जाएगी ना जैसे ही सूरज आ गया। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता तारीकी खत्म होने का मतलब यह है कि अभी सूरज निकला ही नहीं है, निकल गया फौरन खत्म हो गया। उसी तरीके से अगर आपका गम दूर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि अभी आपको खुशी मिली नहीं। ठीक है, जब खुशी मिल गई तो फिर गम एकदम से रफू चक्कर हो जाता है। बहरहाल, तो सब जो है ना वो मिस्र में पहुंचे और वहां पहुंचकर ताजीमन अपने वालिदैन को तख्त शाही पर ऊंचा बिठाया, और उस वक्त सबके कुलूब पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की ऐसी अजमत गालिब हुई कि सब के सब उनके सामने सजदे में। ठीक है, सजदे का आपने सुना ही होगा कि पिछली जो शरीयतें थी नबी अलैहिस्सलाम से पहले की, तो उनके अंदर इबादत का सजदा तो मखलूक को हराम था, यानी किसी मखलूक की इबादत की नीयत से उसके सामने सजदा करना ये तो पिछली शरीयतों में हराम था, लेकिन ताजीम के लिए यानी इबादत नहीं, इबादत से कम दर्जे की चीज जो होती है, जो कि बस किसी की आप इज्जत कर रहे हैं, किसी की आप ताजीम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए अगर सजदा किया जाए तो इसका जवाज था। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए और पूछने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहूदों नसारा के पास गया तो उनको देखा कि वो अपने बड़ों को सजदा करते हैं, ठीक है, जिनको वो यानी अपने दीन का बड़ा समझते हैं, उनका जो पोप है या उनका जो रैबाई है या उनका, तो उसको जो है उनको जो वो सजदा करते हैं। तो मैंने एक और जगह गया, हीरा उस जगह का नाम था, तो वहां पर मैंने गया तो मैंने देखा कि लोग अपने बादशाहों को भी सजदा करते हैं, तो क्या हम आपको सजदा ना किया करें? तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अगर मखलूक को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने खाविंद को सजदा करे, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं। ठीक है, यानी नबी अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी, जो लॉ आप लेकर के आए थे, तो उसके अंदर किसी मखलूक को सजदा करने की इजाजत खत्म कर दी गई, अब ताजीमन भी सजदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको फिर इस वाली हदीस को जो है फिर वो शोहर की इज्जत और शोहर का मुकाम इसको समझाने के लिए इस हदीस को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब जो है वो नफ्स और शैतान जो है वो जिस तरह से हर चीज को अब्यूज करते हैं, यूज करने के बजाय फिर शैतान यहाँ पे अब्यूज करवाता है कि जिस शोहर ने अल्लाह की भी नहीं माननी, रसूल की भी नहीं माननी, अपने शेख की भी नहीं माननी, तो वो जो है ना वो सिर्फ कहता है कि मुझे सजदा किया जाता, अगर इजाजत होती तो मेरी बीवी मुझे सजदा कर रही होती, इसका मतलब ये कि मैं तो हूँ काबिले रेस्पेक्ट, लेकिन मैंने जो है ना वो किसी की बात नहीं माननी। ठीक है, मैंने किसी की रेस्पेक्ट नहीं करनी है, ना अल्लाह का हुक्म मानना है, ना नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म मानना है, ना जो है वो अपने बड़ों का हुक्म मानना है, बस मैंने तो अपने नफ्स शैतान का हुक्म मानना है। भाई ये सारी जो चक्कर हमने चलाए हुए हैं ना, ये तो फिर पता लग पता जाएगा थोड़े दिनों में इंशाल्लाह, फिक्र ना करें इसकी। बहरहाल तो क्या कहते हैं कि सब के सब उनके सामने सजदे में गिर गए, और ये हालत देखकर वो कहने लगे कि ए अब्बा, ये है मेरे ख्वाब की ताबीर जो पहले जमाने में मैंने देखा था, यानी इतने सालों पहले मैंने वो ख्वाब देखा था कि शम्स व कमर और 11 सितारे मुझको सजदा करते हैं, मेरे रब ने इस ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। ठीक है, तो ख्वाब अगर सच्चा हो, अगर सच्चा हो, तो वो कभी ना कभी जो है वो दुनिया के अंदर पूरा होके नजर आता है। ठीक है, लेकिन ख्वाब के बारे में दो क्वेश्चन जो है ना वो अपनी जगह पे बाकी रहते हैं, वो ये है कि क्या ये वाकई सच्चा है या ये झूठा ख्वाब है, क्योंकि ख्वाब जो है वो झूठा भी हो सकता है और ख्वाब सच्चा भी हो सकता है, तो भाई आपको क्या पता है कि आपका ख्वाब सच्चा ख्वाब है, आपको ये अल्लाह के नबी तो नहीं है, ठीक है ना, या आपके अब्बू हुजूर जो है वो अल्लाह के नबी तो नहीं है, ठीक है ना, या आपने जो है वो किसी कंफर्म वली कबीर से जो है वो अपने ख्वाब के बारे में चेक करवा लिया है कि वाकई आपका ख्वाब सच्चा है, ठीक है ना, तो अगर आपने ये सारी चीजें नहीं करवाई हैं तो आपको क्या पता कि आपका ख्वाब सच्चा है कि नहीं सच्चा है। हत्ता के हमारे बुजुर्ग तो यहां तक बताते हैं कि वो जो हदीसे मुबारक है ना कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, इस हदीस को भी बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया, इवन इस हदीस को भी बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया है, और जो है ना वो हर अगला बंदा जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की जियारतों के दावे कर रहा है, आजकल तो लगता है और बढ़ गए ये है? रात को सोते हैं और जो है ना सुबह को नबी अलैहिस्सलाम की जियारत हो गई, नबी अलैहिस्सलाम की जियारत हो गई। ठीक है ना, हमें तो पहली तकलीफ होती थी कि ये किस किस्म की बातें कर रहा है, किस किस्म का इंसान है, और उसको जो है वो ज्यारतों पे ज्यारतें हो रही है, लेकिन हम कुछ कहते नहीं थे, खामोश रहते थे। ठीक है, लेकिन जब हजरत अपने अपने शेख के जुबान से सुन लिया, उनकी किताब के अंदर भी पढ़ लिया, बल्कि दूसरों को भी पढ़ के दिखा दिया, सुना दिया, अब हमें कोई इसके ऊपर वो नहीं है, कोई हमें कोई खौफ नहीं है कि ये जो है ना ये जो नबी अलैहिस्सलाम की जियारतों के जो दावे करने वाले लोग हैं ना, इनका कुछ पता नहीं है, क्या पता झूठा दावा कर रहे हो, कोई कोई नहीं जियारत है, बस ऐसी जो है वो दावा कर रहे हैं कि जी मुझे जियारत हुई है नबी अलैहिस्सलाम की, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर सच्ची भी बात करें ना कि हाँ उनका ख्याल है कि उनको जियारत हुई है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि उनकी जियारत हुई, भाई हम तो हदीसों को जिस तरह अब्यूज करते हैं तो अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे। ठीक है ना, ये जो बीवी बीवी के सजदे वाली हदीस है इसको भी तो अब्यूज कर रहे हैं ना, और पता नहीं कितनी सारी और हदीसें और कितने सारे जो है वो दीन की बातें हैं जिनको कि हम अब्यूज कर रहे होते हैं अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी जो है वो ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, बस ये एक हदीस रह गई है जिसको कि हम अब्यूज नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है, हम इसको भी अब्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो गलत गलत बातों को फैलाने के लिए और गलत गलत यानी अजीब वगरीब किस्म की हरकतें करवाने के लिए ना ये जियारतें जियारतों की हदीसें हैं, बस ये तो हो ही नहीं सकता कि ये कह रहा है कि इसको नबी सलाम जाए, तो ये तो कैसे हो सकता है कि झूठो जब हदीस मौजूद है, तो भाई हदीस के अंदर तो बहुत सारी है, सल्लु कमा रही तुमुनी उसल्ली, ये क्या हदीस नहीं है? ये क्या हदीस नहीं है कि नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए? तो फिर औरतों को क्यों बोलते हो कि नहीं नमाज पढ़ो मर्दों की तरह से? क्यों बोलते हो औरतों को कि मर्दों की तरह नमाज नहीं पढ़ते? अगर हदीस की बुनियाद तो तुमने सारे फैसले करने हैं, तो फिर फिका की क्या जरूरत है, समझ की क्या जरूरत है, फुकहा की क्या जरूरत रह गई है? फिर उसके बाद दूसरों को क्यों मना करते हो कि ये एक हदीस की बुनियाद पर जो है वो दीन की समझ मत हासिल किया करो, वो आपको सारी चीजों को देखना पड़ता है। बस ये ख्वाब वाली एक हदीस ऐसी है जिसको कहे है ना, बस नहीं, ये तो सारी हर किस्म की अब्यूज से ये महफूज हदीस है। ऐसा कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना? तो ख्वाबों के शहजादे हम हमारे हजरत अलहमदुल्ला बहुत दो टोक बात करते हैं, ख्वाबों के शहजादे और शहजादियां बनने की कोई जरूरत नहीं। तो पहली बात तो ये है कि ये जो क्या कहते हैं, ख्वाब के सच्चे और झूठे होने का कुछ पता नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कंफर्म करवा भी लिया कहीं से कि आपका ख्वाब सच्चा है, तो कब पूरा होगा कुछ पता है? कल पूरा हो जाएगा, आज पूरा हो जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब जो है वो 40 साल के बाद जाकर के पूरा हुआ था, 40 साल के बाद। और उससे पहले क्या क्या इनके ऊपर आजमाइशें आई, क्या क्या इनके ऊपर तकलीफें आई, राइट? कुएं में भी जाना पड़ा, और जो है वो गुलाम बन करके जो है वो लोगों के साथ सफर भी करना पड़ा, फिर मिस्र के बाजार के अंदर बिकना भी पड़ा, फिर जो है वो नौकर की तरीके से किसी के घर की जो है वो मुलाजमत भी करनी पड़ी, और फिर उसके बाद जो है वो इतनी बड़ी आजमाइश का भी शिकार होना पड़ा, फिर उसके बाद जो है वो जेल भी जाना पड़ा, और जेल के अंदर क्या क्या कुछ नहीं होता है, कोई आजादी की जिंदगी होती है जेल के अंदर? तो ख्वाब किधर गया फिर? तो ख्वाब तो पूरा हो रहा है ये सारे तमाशे होने के आखिर में जाकर, ख्वाब पूरा, ठीक है ना? और हम जो है ना वो हम ख्वाब को ही देख रहे हैं, उसके बाद तो ऐसा पीछे पड़ते हैं कि बस आप मुझे इसकी ताबीर बता दीजिए, आप मुझे इसकी ताबीर बता दें। हम तो कहते हैं हमें नहीं आती ताबीर, सीधा सीधा जवाब, हमें तो नहीं आती ताबीर भाई ख्वाब की, और कोई जरूरत नहीं है ताबीर की आपके, ठीक है? जिसके जिसको आती है उसके पास जाकर पूछ लें। सो कैन वी से दैट पर्सन सहाबी इफ ही इज अ मुस्लिम, जो ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर ले? नो, कोर्स ना, बिल्कुल भी ख्वाब की ज़ियारत की वजह से कोई सहाबी नहीं बन जाता, ठीक है? अच्छा, तो ये वो ख्वाब था, ये यानी अल्टीमेटली फाइनली उस ख्वाब की ताबीर जो है ना वो अल्लाह ताला ने मुझे सच करके दिखा दी, यानी इसकी सच्चाई का जहूर कर दिया, और इस शर्फ के सिवा मेरे रब ने मुझ पर और इनामात फरमाए, चुनाचे मेरे साथ एक उस वक्त एहसान फरमाया कि जिस वक्त मुझको कैद से निकाला और इस मर्तबा सल्तनत तक पहुंचाया, और दूसरा ये इनाम फरमाया कि बाद इसके कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान में फसाद डलवा दिया था, जिसका मुक्तजा ये था कि उम्र भर भी मुजतमे और मुत्तफिक ना होते, मगर अल्लाह ताला की इनायत है कि वो तुम सबको, जिनमें मेरे भाई भी हैं, बाप भी हैं, माँ भी हैं, बाहर से यहाँ ले आया और सबको मिला दिया। बिला शुबा मेरा रब जो चाहता है उसकी तदबीर लतीफ कर देता है, उसकी तदबीर जो है ना बड़ी आसान कर देता है, बड़ी जो है वो सादा सी और हल्की फुल्की सी तदबीर जो है ना वो अल्लाह ताला के लिए कोई काम करवाना आसान नहीं, कोई काम करवाना जो है वो मुश्किल नहीं, बहुत आसान, ठीक है? तो तदबीर लतीफ का मतलब बहुत ही आसान सी तदबीर कर देता है, आराम आराम से चीजें होती चली जाती, आराम आराम से चीजें होती चली जाती हैं, ठीक है ना? आपको अपना यानी पसीने नहीं बहाने पड़ते आपको, यानी बहुत ज्यादा आपको यानी टेंशन नहीं लेनी पड़ती, अल्लाह ताला जो काम करना चाहते हैं उसके लिए असबाब भी इकट्ठे कर देते हैं, इंसानों के दिलों में भी जो है वो ख्याल डाल देते हैं, लोगों को जो है वो जो दुश्मन होते हैं उनको मरऊब कर देते हैं, उनके दिल के ऊपर रोब डाल देते हैं, ठीक है? और जिस जब जब कोई काम अल्लाह ताला नहीं करवाना चाहते हैं तो 1001 बहाने उसके, कोई मुश्किल है अल्लाह ताला के लिए, राइट? कि किसी को बीमार कर दिया, काम नहीं हो सकता, किसी को जो है वो दुनिया से ही कल्टी कर दिया, काम नहीं हो सकता, ठीक है ना? किसी को जो है वो किसी और उसके दिल के अंदर बदगुमानी डाल दी, काम नहीं हो सकता, राइट? किसी को एक्सीडेंट का शिकार कर दिया, काम नहीं हो सकता। काम अगर रुकवाना चाहे अल्लाह ताला, क्या मुश्किल है इसके लिए, और काम अगर करवाना चाहे तो उसके लिए क्या मुश्किल है, ये बात ठीक है? तो थ्योरी तो ऐसी है कि जिसका के कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मसला सारा का सारा यही होता है कि जब हमारे ऊपर ऐसा मामला पड़ता है ना, तो हम अल्लाह ताला को नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, हम अल्लाह ताला के साथ क्या करते हैं, हम बहुत ही बुरा मुहावरा अल्लाह ताला के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो बुरा मुहावरा क्या है कि जिस तरह क्या कहते हैं उसको, दूध में से मक्खी को निकाल देना, बहुत ही बुरा मुहावरा है, लेकिन हमारी कैफियत को बयान करने के लिए मुझे और कोई अल्फाज याद नहीं आ रहे, हमारी हरकत को बयान करने। हम अपनी जिंदगी में से अल्लाह ताला को ऐसे बाहर निकालते हैं कि जैसे सुम्मा नाउज बिल्ला को दूध में से मक्खी को बाहर निकाले। मतलब क्या है दूध में से मक्खी बाहर निकालने का, कि दूध के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, दूध गंदा भी नहीं होता, ये भी हमें पता है ना। दो एक मक्खी एक एक पर से अगर अंदर जाए तो दूसरे पर को भी डुबो दो तो वो उसका जहर जो होता है वो निगेट हो जाता है। तो दूध के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मक्खी निकाल करके आपने फेंक दी। उसी तरीके से ना अल्लाह को हम ऐसे अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे ख्याल में हमारी जिंदगी में कोई फर्क, ठीक है। दूसरों को हम बताते रहें या हम जो है वो जो भी जो है वो लोगों को नसीहतें करते रहें या दूसरों को तोलते रहें कि देखो ये तो अल्लाह ताला की बात ही नहीं मानता, ये तो दीन नहीं चलता, ये इस्लाम पे नहीं चलता, लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है अल्लाह गायब। भाई आप जब अल्लाह ताला के हुक्म को मानेंगे, जब आप अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचेंगे, तो अल्लाह ताला ने आपकी मदद नहीं करनी, अल्लाह ताला ने आपका रोब इंसानों के दिल में नहीं डालना। क्यों नहीं डालना भाई, राइट? अल्लाह ताला आपके काम को आसान नहीं बना देगा, तो आप अल्लाह ताला को राजी करने की फिक्र में क्यों नहीं पड़ते, आप अल्लाह ताला को अपने साइड पे करने की फिक्र में क्यों नहीं पड़ते, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में नहीं, अल्लाह ताला सिर्फ किताबों की हद तक, अल्लाह ताला सिर्फ मवायज की हद तक है, अल्लाह ताला सिर्फ क्लासों की हद तक है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे जो है ना वो अल्लाह ताला का कोई दखल नहीं है, उसको तो हमने निकाल बाहर किया हुआ है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, ठीक है भाई। जब कोई मुसीबत पड़ती है, जब किसी किस्म की तकलीफ में मुश्किल में आप आए हैं, तो अब आप अल्लाह ताला के हुक्मों पे अमल करते हुए, ठीक है, आप अपनी जिंदगी गुजारें, अल्लाह ताला से मदद तलब करें, गुनाहों के ऊपर अल्लाह ताला से माफी मांगें और अल्लाह ताला से मदद तलब करें, अल्लाह ताला क्यों नहीं मदद करेगा यार। हम जो है ना फिर उस वक्त जो है ना वो अपने आप को कंपेयर करना करना शुरू कर देते हैं किसी ऐसे शख्स से कि जिसको के इन बातों का कुछ पता ही नहीं, तो चूंकि उसने वो रास्ता इख्तियार किया था और उसके साथ बुरा हुआ था, तो अब मैं अगर ये रास्ता यानी जो मुझे मशवरा दिया जा रहा है काम करने के लिए, ठीक है ना, तो अगर मैं उस मशवरे पे अमल करूंगा तो मेरे साथ भी बुरा होगा क्योंकि उसके साथ भी बुरा हुआ था। अल्लाह के बंदे उसके साथ बुरा इसलिए हुआ था क्योंकि वो तो अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी कर रहा था, उसको तो कोई बताने वाला नहीं था, उसने तो किसी की बात नहीं मानी थी, तो इसकी वजह से वो जलील और रसवा हुआ ना। अल्लाह ताला ने उसकी मदद करी ही नहीं, अल्लाह ताला ने उसको दुश्मनों के हवाले कर दिया क्योंकि उसने अल्लाह ताला को नाराज किया हुआ था। तो अब चूंकि उसको अल्लाह ताला ने दुश्मनों के हवाले कर दिया, तो अल्लाह ताला मुझे भी दुश्मनों के हवाले कर देंगे। क्यों क्यों करेंगे आपको दुश्मनों के हवाले? अगर आप अल्लाह ताला को राजी करेंगे, अल्लाह ताला क्या हुक्म मानेंगे, गुनाहों से बचेंगे, तो अल्लाह ताला क्यों आपको दुश्मनों के हवाले कर देंगे? तो ये बात हमें समझ में नहीं आती, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। बाकी बातें करवा लो हमसे 1,000 दीन दीन पिट्टू पिट्टू की तरह से, ठीक है। तो इन्होंने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने, ठीक है, और इनामात भी फरमाए, चुनाचे मेरे साथ एक वक्त एहसान फरमाया कि जिस वक्त मुझको कैद से निकाल, ठीक। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैद से निकलने वाला वाकया, हम भी हमेशा सोचा करते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर सिर्फ कैद से निकलने वाली मुसीबत का क्यों जिक्र किया, उस मुसीबत से निजात का क्यों जिक्र किया, उनके ऊपर तो एक से एक मुसीबतें आई थी, कुएं में डाला जाना, घर से बेदखल हो जाना, क्या ये मुसीबत नहीं आई थी उनके ऊपर? तो उन मुसीबतों को छोड़ करके कैद से निकलने वाली मुसीबत का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो हमारे मशायख ने बेहतरीन इसका जवाब दिया, और हमारे हजरत ने जब ये तफसीर पढ़ाई थी तो उस वक्त उधर से हमने ये जवाब सुना कि अगर ये कुएं का जिक्र करते हैं ना, या घर से जो है वो निकाल दिए जाने का जिक्र करते, तो इसका ब्लेम किसके ऊपर आता था? भाइयों के ऊपर आता था, और भाइयों को जो है ना वो बुरा महसूस होना था, उनकी जिल्लत और रुसवाई होनी थी, भाइयों को ये कर चुके थे माफ। अब जब किसी को आपने माफ कर दिया, तो अब जो है ना फिर उसको उसकी गलतियां याद दिलवाना बिला वजह, बिला वजह उसकी गलतियां याद दिलाने का कोई फायदा नहीं है, ये एक बद अखलाकी वाली हरकत है। हाँ, वजह बन जाए कि भाई वो फिर से वही गलती करने वाला है, तब आपको जो है आप उसको हक बनता है कि आप उसको याद दिलाएं कि भाई पहले आपने ये वाली गलती करी थी, देखें आपके ऊपर कितनी बड़ी मुश्किल आई थी, उस वक्त उसको याद दिला सकते हैं, वो भी उसकी खैरख्वाही के लिए याद दिला रहे हैं ना। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला नहीं है, फिर आप उसको क्यों उसकी गलतियां याद दिला रहे हैं, ठीक है ना? तो ये अच्छे अखलाक के खिलाफ है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम थे, तो उन्होंने ये बद अखलाकी का रास्ता हरगिज इख्तियार नहीं किया। तो उन्होंने जो है ना फिर उस वक्त उन मुसीबतों का जिक्र नहीं किया जिनका ताल्लुक भाई के साथ था, बल्कि उस मुसीबत का जिक्र किया जिसका ताल्लुक भाइयों के साथ नहीं था। बहाना तो बनाना था अल्लाह का शुक्र अदा करने का, तो उस बहाने में भी ख्याल रख, ठीक है, कि किसी की सुबह की ना हो। तो फरमाते हैं कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान में फसाद डलवा दिया था। ये पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन इतनी अहम बात है कि इसको बार बार करना चाहिए कि जो ईमान वाला होता है ना, उसको शैतान से बड़े फायदे होते हैं। ईमान वाले को शैतान के बड़े फायदे हैं, ठीक है। काफिर को तो शैतान के बड़े नुकसान आते हैं, वो काफिर जो है वो तो शैतान के रास्ते पे चल रहा होता है, तो शैतान उसको जहन्नुम में डाल रहा होता है। ईमान वाले के साथ ऐसा नहीं होता, ईमान वालों को शैतान के बड़े फायदे हैं। वो क्या, जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि सारे मसलों को शैतान के ऊपर डाल दिया और भाइयों से दिल साफ। अगर शैतान के ऊपर मसले कसूर ना डालते, तो भाइयों का कसूर जो है ना वो दिल के अंदर बाकी रहता, वो साफ नहीं हो पाता, ठीक है। तो गोया कि शैतान जो है ना वो ईमान वाले के लिए एक वेंट है, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं कि जी मैंने जो है ना शैतान की वजह से गलत किया, मेरा क्या कसूर, नहीं, अपना कसूर तो खुद कि मैंने अपनी जान के ऊपर खुद जुल्म किया, जुल्म किया। ला इलाहा इल्ला अंता इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। यहाँ पे नहीं फरमाया कि बेशक शैतान ने जो है वो मुझे जालिम बना दिया, यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया शैतान ने मुझे जालिम बना दिया, मुझसे गुनाह करवा दिया ना, जो है वो आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने कहा कि शैतान ने हमसे गलती करवा दी, रब्बाना ज़लमना अनफुसा, हमने खुद जो है अपनी जान के ऊपर जुल्म किया, ठीक है ना। तो अपनी जब बारी आएगी तो वहां पे शैतान के ऊपर ब्लेम नहीं करते, लेकिन जब दूसरों की बारी आएगी ना, दूसरों का गुनाह, तो बस शैतान ने उनसे गुनाह करवा दिया, शैतान ने उनसे गलती करवा दी, ठीक है। तो कुरान मजीद में ना हमें ऐसी ऐसी हिदायात मिलती हैं कि अगर हम इनको समझ लें और उनके ऊपर वाकई अमल कर लेना, तो हमारी ना सिर्फ जाती जिंदगी से मसले हल हो जाएंगे, यानी बिल्कुल इंडिविजुअल पर्सनल जिंदगी से मसले खत्म हो जाएंगे, बल्कि हमारी जो जो कलेक्टिव जिंदगी है ना, हमारी खानदानी जिंदगी है, घरेलू जिंदगी है, मुआशरती जिंदगी है, इनके भी मसले खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जितना अमल करेंगे उतना मसले खत्म होंगे, जितना नहीं करेंगे उतने मसले खत्म नहीं होंगे, प्रोपोर्शनेटली होता है जिसका हम मामला। ही गेव ऑल द ब्लेम टू शैतान, ठीक है ना, एंड मोमिन ही कैन गिव ऑल द ब्लेम टू शैतान एज व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल, ठीक है। तो जिसका मुक्तदा यह था कि अच्छा बहरा गया, सब तो हम पढ़ चुके हैं, आगे मारिफो मसाइल हम शुरू कर लेते हैं आज की क्लास में, थोड़ा टाइम है अभी, कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से, एक मिनट, यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से मुतअल्लिक साबिका आयात में ये मालूम हो चुका है कि जब बिइज़्निल खुदाबंदी इसका वक्त आ गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना राज भाइयों पर जाहिर कर दें, तो उन्होंने हकीकत जाहिर कर दी। पहले अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत ही नहीं मिल रही थी कि हकीकत को जाहिर करें, तो कैसे जाहिर कर सकते थे, उन्होंने फिर जाहिर कर दी। जब इजाजत मिल गई तो भाइयों ने फिर माफी मांगी, उन्होंने ना सिर्फ ये कि माफ कर दिया, बल्कि गुज़श्ता वाकया पर कोई मलामत करना भी पसंद नहीं किया। उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ की और अब वालिद से मुलाकात की फिक्र हुई, हालात के लिहाज से मुनासिब ये समझा कि वालिद साहब ही माँ खानदान के यहाँ तशरीफ लाएं, मगर मालूम हो चुका था क्योंकि बिनाई इस मुफारकत में जाती रही, यानी ये जो जुदाई थी ना, तो अल्टीमेटली रोते रोते उनकी बिनाई खत्म हो गई थी, इतना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने बता दिया था। तो इसीलिए सबसे पहले इसकी फिक्र हुई और भाइयों से कहा कि इज़हबू बिकमीस हाज़ा फअल्कूहू अला वजही अबी याती बसीरा, यानी तुम मेरा ये कुर्ता ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, तो उनकी बिनाई उद कर आएगी, यानी वापस आ जाएगी, पलट के वापस आ जाएगी, उद कर आएगी, पलट के वापस आएगी। ये जाहिर है कि किसी के कुर्ते का चेहरे पर डाल देना बिनाई के उद करने का कोई मादी सबब नहीं हो सकता, ठीक है। कुर्ते का क्या ताल्लुक आपकी आई साइट के साथ, तो साइंटिफिकली तो ये चीज नहीं हो सकती। साइंटिफिकली का मतलब क्या होता है बोलना, आज सुबह खवातीन में भी एक बात हो रही, साइंटिफिकली इट्स नॉट पॉसिबल। साइंटिफिकली का मतलब का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो अल्लाह ताला ने दुनिया में फिजिकल मीन्स बनाए, जो फिजिकल मीन्स बनाए हैं ना, उन फिजिकल मीन्स को यूज करते हुए जब कोई काम होता है तो उसको कह देते हैं ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इसकी, या ये साइंटिफिक प्रोसेस है इसका। ठीक है, तो फिजिकल मीन्स जो है ना वो आंखों की बिनाई के वो कुर्ता नहीं होते, ठीक है ना, उसके लिए जो है वो दवाएं होती हैं जो किसी जड़ी बूटी के जरिए से बनाई जाती हैं, या जो है वो ठंडा पानी जो है वो डालने से आंखों को फायदा होता है, लेकिन कुर्ते का क्या ताल्लुक आंखों की बिनाई के साथ। तो ये क्या था फिर, बल्कि ये एक मुअज्जा था। मुअज्जा कब होता है, जबकि फिजिकल मीन्स जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं, मटीरियल मीन्स, फिजिकल मीन्स, इनके खिलाफ कोई काम हो जाए, इनके बगैर कोई काम हो जाए, तो उसको जो है वो मुअज्जा कहते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये मुअज्जा था, उनको बिइज़्निल खुदाबंदी मालूम हो गया कि जब उनका कुर्ता वालिद के चेहरे पर डाला जाएगा तो अल्लाह ताला उनकी बिनाई बहाल फरमा दे। ठीक है, और वहाक और मुजाहिद वगैरह आइमा तफसीर ने फरमाया कि ये उस कुर्ते की खसूसियत थी, क्योंकि ये आम कपड़ों की तरह का कुर्ता नहीं था, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से उस वक्त लाया गया था जब उनको बरहना करके नमरूद ने आग में डाला था। फिर ये जन्नत का लिबास हमेशा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास महफूज रहा, और उनकी वफात के बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास रहा, उनकी वफात के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला, और आपने उसको एक बड़ी मुतबर्रक शय की हैसियत से एक नलकी में बंद करके यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में बतौर तावीज के डाल दिया था। ठीक है, आयमा तफसीर ने ये बात नकल करके बयान करी है। अब इन आयमा तफसीर को जो है ना वो क्या अरब हजरात ही मानते, सलफी हजरात ही मानते, अहले हदीस हजरात ही मानते, जो कहते हैं तावीज पहनना जो है वो नाजायज है। ठीक है भाई, तावीज पहनना जो है वो इतने बड़े बड़े आइमा ने जो अपनी किताबों के अंदर रखा है, लिखा है, और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अल की हदीस भी है कि वो जो है वो बच्चों को जो है ना वो तावीज पहना दिया करते थे। उन तावीज में लिखा क्या होता था, पुरानी आयात लिखी होती जो हिफाजत की दुआ है या हिफाजत की जो आयात है, क्योंकि बच्चे जो है वो खुद पढ़ करके और फिर अपने ऊपर दम करना या हिसार बनाना, ये बच्चे ये वाला काम नहीं कर सकते थे, तो वो लिख करके जो है ना वो तावीज पहना दिया करते थे। बड़ों के लिए क्या है, पढ़ो, हिफाजत की आयात को पढ़ो, दुआओं को पढ़ो, और फिर सुन्नत से क्या साबित है कि वो अपने हाथों पे दम करके फिर अपने हाथों को अपने ऊपर मल लो। ठीक है, तो बड़ों के लिए ये तावीज है, बच्चों के लिए जो है वो पहनने वाली तावीज है, हत्ता के कोई मुतबर्रक चीज हो, कंफर्म हो, अगर मुतबर्रक, जैसे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ही कुर्ता मौजूद था, तो इसको जो है वो तावीजन हिफाजत के लिए, तावीज का मतलब क्या होता है, जिस चीज से हिफाजत हासिल की जाए। ठीक है, हिफाजत तो अल्लाह ने करनी होती है, तो फिर ये कौन सी हिफाजत भाई, ये मजाजी हिफाजत कहलाती है, यानी आप हिफाजत की जो जो क्या कहते हैं असल नस्बत है ना, हकीकी नस्बत वो अल्लाह की तरफ है, हिफाजत की हकीकी नस्बत अल्लाह की तरफ है, लेकिन हिफाजत की मजाजी नस्बत वो अल्लाह ताला की बनाई हुई उन चीजों की तरफ भी की जा सकती है जिनको कि अल्लाह ताला ने हिफाजत का सबब बनाया है, जिनको अल्लाह ताला ने बनाया है, और वो हमें कैसे पता चलेगा कि इस चीज को अल्लाह ने बनाया, इस चीज को अल्लाह बनाया या इस चीज को अल्लाह ने नहीं बनाया। ठीक है, हमें जो है वो सुन्नत के जरिए से पता चलेगा। ठीक है, कुरान और सुन्नत की दलील से हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये चीज जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत के लिए बनाई गई है, तो हम उससे जो है वो हिफाजत हासिल करने का यानी बतौर सबब के उनको इस्तेमाल कर सकते, और अपनी बोलचाल के अंदर हम उनकी तरफ हिफाजत की मजाजी नस्बत कर सकते, नॉट रियल, नॉट हकीकी नस्बत, बल्कि मजाजी नस्बत कर सकते। ठीक है, मजाजी का मतलब पता है, मजाजी खुदा तो सबको ही पता होगा, है बीवियों को भी पता चल ही गया होगा अब तक, मजाजी खुदा किसको कहते हैं, उसकी हदीस भी शुरू में हमने पढ़ी थी कि अगर इजाजत होती सजदा किए जाने की तो शौहर को सजदा करने का हुक्म देता मैं बीवियों को, तो इस तरह से जो है ना वो शौहर साहब जो है मजाजी खुदा बन जाते हैं, असली हकीकी खुदा को थोड़ी बन जाते हैं, मजाजी खुदा कि अगर। ठीक है, तो मजाजी का मतलब जो है नॉट रियल बट इट हैज ए कनेक्शन टू इट। ठीक है, अच्छा अब ये जितने बिदती लोग हैं, जितने शिरकियाना अफाल करने वाले लोग हैं, वो भी इसी तरीके से फलानी चीज से जो है वो हिफाजत, जी हम असल में इससे को थोड़ी हिफाजत हासिल कर रहे हैं, असल में तो अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है, लेकिन हम इस चीज को जो है ना वो मजाजी निस्बत, भाई आप भी तो कह रहे थे क्लास के अंदर की मजाजी निस्बत की जा सकती है, तो हम भी तो मजाजी निस्बत ही कर रहे हैं कि पीर साहब जो है ना वो अपने कब्र में बैठे बैठे हमारी हिफाजत फरमा देंगे, हम मजाजी निस्बत ही तो कर रहे हैं पीर साहब की तरफ, हकीकी निस्बत को थोड़ी कर रहे हैं पीर साहब की तरफ, नहीं, जिस चीज की सुन्नत से दलील नहीं मिलती है आप उसकी तरफ मजाजी निस्बत नहीं कर सकते, बेशक आप मजाजी निस्बत कर रहे हैं, आप हकीकी निस्बत नहीं कर रहे, लेकिन उसकी दलील क्या है आपके पास, अगर नबी अलैहिस्सलाम से किसी तरीके से वो दलील मिल रही है फिर तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं मिल रही है तो फिर आप मजाजी निस्बत नहीं कर सकते, अगर आप किसी ऐसी चीज की तरफ मजाजी निस्बत करेंगे जिसकी दलील नहीं है तो फिर ये शिर्क बन जाए, तो फिर ये शिर्क बन जाएगा, ठीक है। बहरहाल ये ईमान और कुफर वाली किताब का फिर मौजू शुरू हो गया, लेकिन वहां पर फिर इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे किताब में से, कि जो कुफार मक्का थे वो भी मजाजी नस्बत ही किया करते थे बुतों की तरफ, कि ये बुत जो है वो बारिश बरसाने वाला बुत है, ये बुत जो है वो रिस्क देने वाला बुत है, ये बुत जो है वो फलाने काम वाला बुत है, वो भी हकीकी नस्बत नहीं करते थे, वो मजाजी नस्बत करते थे, ठीक है। लेकिन क्या दलील थी इसकी कि बुत कुछ काम कर सकता है, किसने बताया उनको कि बुत कोई काम कर सकता है, किसी झूठे फरेबी दगाबाज ने बताया, किसी शैतान ने बताया, राइट, या किसी बेवकूफ इंसान ने बताया, तो ये तो कोई दलील नहीं है ना कि बेवकूफ इंसान आपको कह दे कि जी इस बुत से जो है ना वो आपको औलाद मिल जाएगी, और इस बुत से जो है वो आपको रुपए पैसे मिल जाएंगे, और इस बुत से आपको जो है वो बारिश मिल जाएगी, और इस बुत से आपको जो है फलानी चीज मिल जाएगी, झूठ बोलता है वो बंदा, कोई नहीं मिलेगी इसमें से कुछ भी, लेकिन अल्लाह का नबी आकर कोई कोई बात बता दे कि हाँ भाई इस चीज से जो है ना वो तुम्हें फलाना फायदा हो जाएगा, इस चीज से तुम्हें फलाना फायदा हो जाएगा, तो भाई वो दलील है कि अल्लाह के नबी ने आकर के बताइए, ठीक है। अच्छा, तो उनकी वफात के बाद, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद रहा, उनकी वफात के बाद याकूब अलैहिस्सलाम को मिला, आपने उसको एक बड़ी मुतबरक शय की हैसियत से एक नलकी में बंद करके यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में बतौर तावीज के डाल दिया था, ताकि नजरे बद से महफूज रहे। बरादरान यूसुफ ने जब उनका कुर्ता वालिद को धोखा देने के लिए उतार लिया और वो बरहना करके कुएं में डाल दिए गए, तो जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और गले में पड़ी हुई नलकी खोल कर उससे ये कुर्ता बरामद किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहना दिया, ठीक है। तो कुएं में फेंकने से पहले ना उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी कभी लिबास उतार दिया था और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कोई कुर्ता पहना दिया और ये उनके पास बराबर महफूज चला आया। उस वक्त भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये मशवरा दिया कि ये जन्नत का लिबास है, उसकी खासियत ये है कि नाबीना के चेहरे पे डाल दो तो वो बीना हो जाता है, और फरमाया कि उसको अपने वालिद के पास भेज दीजिए तो वो बीना हो जाएंगे। मुजद्दद अरफ़ानी रहमतुल्लाह की तहकीक ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल और उनका वजूद खुद जन्नत ही की एक चीज थी, इसलिए उनके जिस्म से मुत्तसिल होने वाले हर कुर्ते में ये खासियत हो सकती है, ठीक है। उनको जो है वो उस वाली हदीस की कोई दलील ऐसी नहीं मिली, उनकी अपनी तहकीक जो थी वो ये थी, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता था, तो जैसे नबी के कुर्ते के अंदर जो है वो बरकत होती है, उसी तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते के अंदर बरकत थी और उसका तासीर ये, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है आगे की जो बातें हैं वो इंशाल्लाह हम फिर अगली क्लास के ऊपर रखते हैं, क्योंकि क्लास का वक्त खत्म हो गया, अगर किसी को कोई सवाल या फिर कमेंट वगैरह पूछना हो, कहना हो, तो वो अभी बता सकते हैं, कर सकते हैं। क्लास में वैसे दरमियान में भी सवाल करने की इजाज़त होती है, लेकिन आखिर में फिर अलग से पूछ भी लेते हैं अगर कुछ टाइम बाकी हो तो। कुर्ता नलकी के अंदर था जी, कुर्ता नलकी के अंदर था, अब वो नलकी जो है वो बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कुर्ता, अगर वो वाकई जन्नत का कुर्ता था तो उसका जो फैब्रिक होगा वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो कैसा फैब्रिक होगा, ठीक है। तो वो फैब्रिक है ना वो यानी दुनिया के फैब्रिक से कुछ हट करके ही कोई चीज होगी कि उसको जो है वो इतना अच्छी तरीके से और इतना ज्यादा जो है वो फोल्ड कर सकते हैं कि वो पतली सी नलकी के अंदर भी आ जाए, लेकिन नलकी जो है वो थोड़ी सी मोटी भी हो सकती है, थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, यानी एक एक पाइप टाइप की चीज, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हम जो जो स्ट्रॉ यूज करते हैं ना तो वो उतनी ही पतली हो, उससे थोड़ी सी मोटी भी हो सकती है, हम देखिए इस तरह की चीज है ना, तो आप इमेजिन कर लें थोड़ा सा अगर मोटी सी, पाइप को, और उसकी जो अगर आप लेंथ बना लें ना एक लाइक बालिश के बराबर भी, तो इट्स सफिशियंट कि उसके अंदर एक पूरा का पूरा कुत्ता जो है वो फोल्ड करके उसके अंदर घुसाया जा सके। बहरहाल क्या कह रहे हैं आप, बच्चे गलती करें तो फिर तो शैतान की तरफ मंसूब नहीं करना है ना, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि वो वाकई शैतान बन जाए तो फिर आप करें उसकी तरफ मंसूब। अच्छा सॉरी, आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, मैं समझ कुछ और गया। यानी यानी वो जो मना किया जाता है कि बच्चों को शैतान ना कहो, ये तो बड़ा शैतान है, ये तो बड़ा शैतान है, इस तरह से बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, तो ये तो हरगिज हरगिज नहीं करें भाई, वरना फिर वो कहीं बनी ना जाए आपके कहने के ऊपर शैतान। ठीक है, क्योंकि कबूलियत दुआ के औकात होते हैं, और इस तरह के अल्फाज जो है ना वो अल्लाह ताला के यहाँ कभी कबूल हो जाते हैं, बाकायदा हदीस मुबारक कई है, ये तो हरगिज नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चे गलती करें फिर तो शैतान की तरफ मंसूब नहीं करना है कि शैतान ने गलती करवा दी होगी। तो जो आपका असल सवाल है ना, तो उसके ऊपर तो क्या कहूंगा भाई, जब तरबियत कर रहे हैं आप, इसकी बच्चे की तरबियत करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है, तो अब आप जो है वो अगर उसको कहें हाँ भी कोई बात नहीं शैतान ने करवा दिया होगा उससे ये काम, तो फिर बच्चे की तरबियत कैसे होगी अगर यहाँ पे ये सवाल है आपका, तो ठीक है, तो उसकी 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 गलती की इसलाह करना और सही तरीके से करना, अच्छे तरीके से करना, ये सब जो है वो तरबियत का हिस्सा है। बाकी ये कि शैतान तो अल्लाह का दुश्मन है, तो फिर और कोई सवाल अगर पूछना, ठीक है चलें, क्लास का टाइम जो है वो जब ज्यादा ज्यादा ओवर हो चुका है तो हम क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।